तीसरा, लंका की प्रगति। देवान नाम पियतिस के बाद जिन राजाओं ने सिंघल ताम्रपर्णी या लंका पर शासन किया उनके संबंध में कुछ बातें उल्लेखनीय है। तिस की मृत्यु 207 ईस्वी पूर्व में हुई थी। उसके बाद उसका भाई उत्तीय राजा बना था और उत्तीय के बाद उसके अन्य दो भाई, इनमें अंतिम सूर तिस 187 से 277 ईस्वी पूर्व था, जिसके शासनकाल में दक्षिणी भारत के तमिल लोगों ने सिंघल पर आक्रमण कर उसके उत्तरी भाग को जीत लिया था। लंका के तमिल शासकों में एलार का नाम उल्लेखनीय है। वह एक न्यायकारी राजा था और शासन करते हुए मित्र, शत्रु, स्वजन आदि में कोई भेद नहीं करता था। उसके न्याय के संबंध में अनेक कथाएं प्रसिद्ध हैं। उसके अपने पुत्र से अनजाने में गोहत्या हो गई थी, पर क्योंकि गोहत्या के लिए प्राणदंड का विधान था, अतः एलार ने उसे भी मृत्यु का दंड दिया। उसके न्याय की ऐसी ही अनेक कथाएं सिलप्पदिकारम सदृश तमिल ग्रंथों में विद्यमान है। पर तमिल लोग देर तक लंका में अपना शासन कायम नहीं रख सके। दुट्टगामिनी 101 से 77 ईस्वी पूर्व नामक प्रतापी सिंघल राजा ने तमिलों को परास्त कर लंका में पुनः राजनीतिक एकता स्थापित की और अनुराधपुर को फिर से अधिगत कर वहां से संपूर्ण देश का शासन किया। लंका के राजाओं में दुट्टगामिनी अत्यंत प्रसिद्ध है। तमिल आक्रांताओं को परास्त कर जहां उसने लंका की राज शक्ति को पुनः स्थापित किया, वहां साथ ही बौद्ध धर्म के उत्कर्ष के लिए भी अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। उसी द्वारा लंका की सबसे बड़ा स्तूप रत्नमाल्य चैत्य बनवाया गया। दुट्टगामिनी के बाद अनुराधपुर के राज सिंहासन पर जो राजा आरूढ़ हुए उनका क्रमबद्ध इतिहास महावंश में विद्यमान है, पर इस ग्रंथ में इन सब राजाओं के नाम तक दे सकना असंभव है। कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का ही यहाँ उल्लेख किया जा सकता है। राजा वट्टगामणि 29 से 17 ईस्वी पूर्व का शासनकाल बौद्ध धर्म के लिए विशेष महत्व का था। अब तक बुद्ध के उपदेश लेखबद्ध नहीं हुए थे, अस्थावीरों और भिक्षुओं के वे कंठस्थ रहते थे और श्रुति परंपरा द्वारा शिष्य गुरु से उनका ज्ञान प्राप्त किया करते थे। पिछले वर्षों में तमिलों के जो आक्रमण लंका पर होते रहते थे उनके कारण बौद्ध भिक्षुओं के लिए भी संकट उत्पन्न हो गया था और उनके लिए निश्चिंत होकर बुद्ध वचनों का स्मरण कर रहना सुगम नहीं रहा था। वट्टगामिनी के राज सिंहासन पर आरूढ़ होने के बाद लंका में एक घोर दुर्भिज भी पड़ा, जिसके कारण भिक्षुओं के लिए अपना जीवन निर्वाह कर सकना भी कठिन हो गया। इस दशा में बुद्ध वचनों की निरंतर आवृत्ति करते हुए उनकी रक्षा भी कर सकना एक समस्या थी। जब दुर्भिज की समाप्ति हो गई तो भिक्षुओं ने यह विचार किया कि यदि भविष्य में फिर कभी ऐसा ही उपद्रव उठ खड़ा हो तो शायद बुद्ध के वचन लुप्त ही हो जाएंगे, अतः उचित यह होगा कि उन्हें लेखबद्ध कर दिया जाए। अनुराधपुर के महाविहार में भिक्षुओं का महासंघ एकत्र हुआ और वहां विनय सूत्र, अभिधर्म और उनकी टीकाओं, अष्ट कथाओं का पारायण किया गया। इसके पश्चात मातले के समीप अलुलेना गुहा में जाकर श्रुति परंपरा से चले आते संपूर्ण बुद्ध वचन को लेखबद्ध किया गया। पाली भाषा का जो लेखबद्ध त्रिपिटक इस समय बौद्धों का प्रामाणिक धर्म ग्रंथ है, उसने वट्टगामिनी के समय में ही अपना वर्तमान लिखित रूप से प्राप्त किया था। इसी काल में लंका के बौद्धों में कुछ मतभेद भी प्रादुर्भूत होने लगे। राजा वट्टगामिनी ने अभयगिरी नाम के विहार का निर्माण कराया था, जिसे उसने तिश्य नामक भिक्षु को प्रदान कर दिया था। तिश्य का संबंध राजवंश के साथ था और उसका व्यक्तिगत आचरण ऐसा था जिससे अन्य भिक्षु असंतुष्ट हो गए और उन्होंने उसे संघ में बहिष्कृत कर दिया। पर तिश्य ने अभयगिरी विहार नहीं छोड़ा और उसके बहुत से शिष्य अन्य स्थानों से आकर वहीं निवास करने लगे। इसी समय भारत से कुछ बौद्ध भिक्षु लंका आए। ये वत्सीपुत्रीय संप्रदाय के अनुयायी थे और आचार्य धर्मरुचि के शिष्य थे। लंका में इन्होंने अभयगिरी विहार में आश्रय लिया और इनके संपर्क से तिश्य तथा उसके अनुयायियों ने बौद्ध धर्म का एक नया निकाय संप्रदाय स्थापित किया, जिसे धर्मरुचि निकाय नाम दिया गया। इस संप्रदाय के मातले में लेखबद्ध हुए पाली त्रिपिटक के बजाय वह पुल्य पिटक को अपने धर्म ग्रंथ के रूप में स्वीकार किया। वह पुल्य पिटक महायान संप्रदाय में मान्य है। धर्मरुचि संप्रदाय अभयगिरी को केंद्र बनाकर लंका में फलता फूलता रहा और वहां के प्रधान बौद्ध संघ से उसके मतभेद तथा विरोध में भी वृद्धि होती गई। लंका के पुराने बौद्ध संघ का केंद्र इस समय अनुराधपुर का महाविहार था और धर्मरुचि निकाय का अभयगिरी। राजा वोहारिक तिस 269 से 291 ईस्वी ने महाविहार के भिक्षुओं के प्रभाव में आकर अभयगिरी के संप्रदाय को दबा देने का प्रयत्न किया और कुछ समय के लिए उसे सफलता भी प्राप्त हो गई, पर शीघ्र ही अभयगिरी के भिक्षुओं ने फिर सिर उठाया और वे महाविहार के बौद्ध संघ के विरुद्ध प्रचार करने में तत्पर हो गए। इस स्थिति में राजा गोठाभय 309 से 22 ने महाविहार का पक्ष लेकर धर्मरुचि निकाय की सत्ता को कानून के विरुद्ध घोषित कर दिया और उसके 60 अस्थवीरों को देश छोड़कर अन्यत्र चले जाने के लिए विवश किया। लंका से ये अस्थवीर दक्षिणी भारत गए और वहां के बौद्धों के सम्मुख उन्होंने इन अत्याचारों की कथा प्रस्तुत की जो राजा गोठाभय द्वारा वैपुल्यवादी धर्मरुचि निकाय पर किए जा रहे थे। इन्हें सुनकर संघ मित्र नामक विद्वान ने यह निश्चय किया कि लंका जाकर वह इस स्थिति में सुधार करेगा। वह लंका चला गया और उसकी विद्वता से प्रभावित होकर राजा गोठाभय ने उसे अपने राजकुमारों का शिक्षक नियुक्त कर दिया। गोठाभय के दो पुत्र थे, जेठ तिस और महासेन। इनमें महासेन संघमित्र से बहुत प्रभावित हुआ और उनका श्रद्धालु भक्त बन गया। गोठाभय की मृत्यु के पश्चात जेठ तिस लंका का राजा बना, पर वह केवल 10 साल 323 से 33 तक शासन कर सका। फिर महासेन अनुराधपुर के राजसिंहासन पर आरूढ़ हुआ। वह संघमित्र के इतने अधिक प्रभाव में था कि उसकी प्रेरणा से उसने महाविहार के भिक्षुओं को धर्मरुचि निकाय को अपना लेने का आदेश दिया। जब वे इसके लिए तैयार नहीं हुए तो उन पर घोर अत्याचार किए गए। उसने महाविहार की सब संपत्ति जब्त कर ली और उसे अभयगिरी विहार को प्रदान कर दी। यद्यपि लंका में मुख्यतया हीनयान संप्रदाय का प्रचार था और महाविहार के भिक्षु इसी संप्रदाय के अनुयायी थे, पर उसके साथ साथ वैपुल्यवाद धर्मरुचि निकाय के रूप में महायान संप्रदाय भी वहां फल फूल रहा था। बौद्ध धर्म के इन दो प्रमुख संप्रदायों के विरुद्ध में लंका में कैसा उग्र रूप धारण किया हुआ था, इसका अनुमान राजा वोहारिक तिस और महासेन के इतिवृत्त द्वारा किया जा सकता है। महासेन के शासनकाल में वैपुल्यवाद का बहुत उत्कर्ष हुआ था, पर बाद में उसके प्रभाव में निरंतर कमी आती गई। 6वीं सदी के अंत में ज्योतिषपाल नाम का एक प्रसिद्ध बौद्ध आचार्य भारत से लंका गया और वहां उसने वैपुल्यवाद संप्रदाय के दोषों का प्रतिपादन किया। इसी आचार्य के प्रचार का यह परिणाम हुआ कि लंका से महायान संप्रदाय की उस शाखा का लोप हो गया जो धर्मरुचि या वैपुल्यवाद निकाय के रूप में वहाँ फल फूल रही थी। 598 ईस्वी में अभयगिरी विहार के भिक्षुओं ने महाविहार की अधीनता स्वीकार कर ली और वहां के महासंघ की व्यवस्थाओं तथा नियमों का पालन करने लगे। पर लंका में हीनयान का मार्ग अपनी पूर्णतया निष्कंटक नहीं हुआ था। 7वीं सदी में भारत में बौद्ध धर्म के अन्य संप्रदाय का बीजारोपण हुआ था जिसे वज्रयान कहते थे। 8वीं और 9वीं सदियों में वज्रयान ने बहुत उन्नति की और वह महायान का प्रमुख संप्रदाय बन गया था। इस संप्रदाय में तंत्र मंत्र को बहुत महत्व दिया जाता था और सिद्धि प्राप्त करने के लिए अनेक विद्य गूह्य अनुष्ठान किए जाते थे। 9वीं सदी के प्रारंभ में वज्रयान संप्रदाय का एक भिक्षु लंका गया और अपने मत का प्रचार करने में उसने अच्छी सफलता प्राप्त की। वहां के राजा को भी वह अपने प्रभाव में ले आया। इसी का यह परिणाम हुआ कि लंका में वज्रयान के सूत्रों का पठन पाठन होने लगा और लोग तंत्र मंत्र के साधन में तत्पर हुए। अनुराधपुर का महाविहार भी वज्रयान के प्रभाव से अपने को नहीं बचा सका। अनुराधपुर के भग्नावशेषों का उत्खनन करते हुए एक स्तूप के कंडहरों में 13 ताम्रपत्र मिले हैं जिन पर वज्रयान के अनेक मंत्र उत्कीर्ण हैं। ये ताम्रपत्र 8वीं-9वीं सदी के हैं, जिससे यह सूचित होता है कि उस काल तक लंका में वज्रयान का भी प्रवेश हो गया था। बौद्धों के पारस्परिक मतभेदों और विरोधों के कारण तो लंका में बौद्ध धर्म को क्षति पहुंच ही रही थी, पर संभवतः इससे भी अधिक क्षति उसे तमिल देश के आक्रमणों के कारण हुई। दक्षिणी भारत के तमिल राज्य लंका में पड़ोसी हैं। कुछ मील चौड़ी समुद्र ही उन्हें एक दूसरे से पृथक करती है। तमिल चोल देश के महत्वाकांक्षी राजा अपने राज का विस्तार करते हुए बहुधा लंका पर आक्रमण करते रहते थे और अनेक बार उन्हें अपने अभियानों में सफलता भी प्राप्त हुई थी। इलार द्वारा लंका के उत्तरी प्रदेशों में अपने तमिल राज की स्थापना का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। उसके बाद भी लंका पर चोलों तमिलों के आक्रमण होते रहे, जिन सबका उल्लेख करने का कोई विशेष उपयोग नहीं है। दूसरी सदी ईस्वी के अंतिम चरण में गजबाहु या गजबाहु कामिनी 174 से 196 ईस्वी अनुराधपुर के राज सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। वह अत्यंत शक्तिशाली राजा था। उसने न केवल अपने सब विरोधियों का दमन कर लंका में राजनीतिक एकता स्थापित की, अपितु चोल देश पर भी आक्रमण किया। दक्षिणी भारत में अग्रसर होते हुए वह तिरुचरपल्ली के समीप उरैयूर तक चला आया, जो उस समय चोल राज की राजधानी थी। वहां आकर उसने चोल देश के राजा के साथ संधि कर ली, जिसका सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि लंका में भी अनेक हिंदू मंदिरों का निर्माण किया गया। चोल देश के राजा तथा निवासी पौराणिक हिंदू धर्म के अनुयायी थे और लंका के बौद्ध धर्म के, पर लंका में भी तमिल जाति के बहुत से लोग बसे हुए थे, जिनका अपना राज्य भी उसके उत्तरी प्रदेशों में रह चुका था। ये सब पौराणिक धर्म को मानते थे, इसलिए गजबाहु ने जब चोल राज से संधि कर ली और उनके संबंध में मैत्रीपूर्ण हो गए तो लंका में हिंदू मंदिरों के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया। पुराने समय के कतिपय हिंदू मंदिर या उनके भग्ना अवशेष अब भी वहां विद्यमान हैं। पर लंका और तमिल राज का सौहार्दपूर्ण संबंध देर तक कायम नहीं रहा। चोल सेनाओं ने शीघ्र ही फिर लंका पर आक्रमण करने प्रारंभ कर दिए और उनके कारण अनुराधपुर आदि के विहारों को क्षति भी पहुंचती रही। पर लंका पर दक्षिणी भारत से एक बहुत बड़ा आक्रमण 9वीं सदी के मध्य भाग में उस समय हुआ जबकि सेन शिलमेघ 824 से 44 अनुराधपुर के राज सिंहासन पर विराजमान था। यह आक्रमण पांडे देश के राजा श्रीमार श्री बल्लभ द्वारा किया गया था। अनुराधपुर पांडे सेनाओं के सम्मुख नहीं टिक सका और उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया। राजा सेन शीलमेघ के राजकोष में जो भी बहुमूल्य वस्तुएं थी, विहारों में सोने की जो मूर्तियां आदि थी और वहां जो धन संपत्ति संचित थी, पांडे सेनाओं द्वारा वह सब अपने देश को ले जाई गई। सेन शीलमेघ ने पांडे राजा की अधीनता स्वीकार कर लेने में ही अपना हित समझा और उसे अपना वशवर्ती बनाकर श्रीमार श्री बल्लभ अपने देश को वापस लौट गया। पर शीघ्र ही लंका को अपने अपमान का प्रतिशोध करने का अवसर मिल गया। सेन शीलमेघ के उत्तराधिकारी सेन द्वितीय 844 से 879 के शासनकाल में पांडे देश के एक राजकुमार ने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर लंका में आश्रय ग्रहण किया और सेन द्वितीय से पांडे पर आक्रमण करने के लिए अनुरोध किया। लंका की सेना ने पांडे पर आक्रमण कर उसकी राजधानी मदुरा पर कब्जा कर लिया और अनुराधपुर तथा अन्यत्र जो बहुमूल्य वस्तुएं तथा सोने की बुद्ध मूर्तियां आदि श्रीमार श्री बल्लभ द्वारा पांडे देश ले जाई गई थी, वे सब पुनः लंका वापस ले आई गई। पर अनुराधपुर का जो विनाश श्रीमार श्री बल्लभ द्वारा किया जा चुका था, उसकी क्षतिपूर्ति कर सकना संभव नहीं हुआ। यद्यपि पांडे देश को लंका द्वारा परास्त कर दिया गया था, पर इससे लंका बाह्य आक्रमणों के भय से मुक्त नहीं हो गई। इस समय दक्षिणी भारत में चोल राज बहुत तेजी से उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हो रहा था। उसके राजा परांतक प्रथम 907 से 953 ने पांडे देश को जीतकर मदुरांतक और मदुरै कुंड मदुरा का विजेता की उपाधियां ग्रहण की थी। पांडे को जीतकर उसने लंका पर आक्रमण किया और वहां के राजा उदय चतुर्थ को परास्त कर लंका के उत्तरी प्रदेशों पर कब्जा कर लिया। इस आक्रमण में लंका में अनेक विहारों का ध्वंस हुआ, पर परांतक देर तक लंका पर अपना कब्जा नहीं रख सका। इसी समय राष्ट्रकूटों ने उत्तर पश्चिम की ओर से चोल राज पर आक्रमण कर दिया, जिसका मुकाबला करने के लिए परांतक को लंका से प्रस्थान कर देना पड़ा। परांतक प्रथम के उत्तराधिकारियों में राजा राज प्रथम 985 से 1012 अत्यंत प्रतापी था। पांडे और केरल पर अपने प्रभुत्व को भली भांति स्थापित कर उसने लंका को आक्रांत किया और उसके उत्तरी प्रदेशों को अधिगत कर उन्हें मुम्मुडी चोल मंडलम नाम प्रदान किया। लंका के कतिपय ग्राम उस द्वारा तंजौर के हिंदू मंदिरों को दान के रूप में भी दे दिए गए। राजराज प्रथम के बाद राजेंद्र 1012 से 1044 चोल साम्राज्य का स्वामी बना। वह देश का सबसे प्रतापी राजा था और उसके समय में चोल साम्राज्य उन्नति की चरण सीमा को पहुंच गया था। राजेंद्र केवल उत्तरी लंका से ही संतुष्ट नहीं हुआ, उसने लंका के उन दक्षिणी प्रदेशों को भी जीत लिया जो अब तक चोलों के अधीन नहीं हुए, और वहां जो राजा महेंद्र पंचम 979 से 1027 के शासन में थे। लंका के राजकोष में जो बहुत से अमूल्य रत्न संचित थे, राजेंद्र उन सबको अपने देश ले गया और साथ में महेंद्र पंचम की महिषी पटरानी को भी। महेंद्र ने जंगल में भागकर अपनी जान बचाई थी, पर उसे भी पकड़ लिया गया और उसका शेष जीवन चोल राज्य में व्यतीत हुआ। राजेंद्र द्वारा लंका के बहुत से विहार भी नष्ट किए गए और उनकी स्वर्ण मूर्तियों को चोल देश में ले जाया गया, क्योंकि अनुराधपुर को पहले ही ध्वस्त किया जा चुका था। अतः जब पोलन रूप को नई राजधानी बनाया गया और राजेंद्र ने वहीं से लंका का शासन किया। यद्यपि लंका के राजा महेंद्र पंचम को कैद करके चोल देश भेज दिया गया था, पर उसका पुत्र कश्यप अभी लंका में ही था। लंका के एक दक्षिणी प्रदेश में वह जीवन व्यतीत कर रहा था और राजेंद्र इस प्रयत्न में था कि उसे भी अपना वशवर्ती बना लिया जाए। इसीलिए उसने उसके विरुद्ध एक बड़ी सेना भी भेजी थी, पर काश्यप उसके हाथ नहीं पड़ा और रोहण नामक स्थान पर निवास करते हुए वो अपने राजकुल की मर्यादा को अक्षुण रखने का प्रयत्न किया, पर चोल सम्राटों ने वहां भी उसे शांतिपूर्वक नहीं रहने दिया। 1039 ईस्वी में काश्यप की तो मृत्यु हो गई थी, पर उसके उत्तराधिकारियों पर चोल सेनाएं निरंतर आक्रमण करती रहीं और दक्षिणी लंका से जो भी धन संपत्ति प्राप्त हो सकती थी उसे लूट लेने में वे तत्पर रहे। साथ ही लंका के राजकुल के व्यक्तियों ने राजमुकुटों को भी वे गेंद की तरह से उछालती रहीं। राजेंद्र के उत्तराधिकारी चोल सम्राट राजा धीराज 1044 से 1052 ने अपने एक शिलालेख में दावा किया है कि उसने सिंघल लंका के चार राजाओं को राजमुकुटों से वंचित किया था। इन राजाओं के नाम विक्रम बाहु, विक्रम पांडे, वीर शिलामेघ और श्री बल्लभ मदनराज थे। इसमें संदेह नहीं कि 11वीं सदी में लंका पर चोल सम्राटों का प्रभुत्व भलीभांति स्थापित था। ये सम्राट पौराणिक हिंदू धर्म के अनुयायी थे और बौद्ध धर्म के प्रति इनका विरोध भी प्रकट होता रहता था। पोलन रूप में एक शैव मंदिर है जिसमें चोल सम्राट राजेंद्र प्रथम के अनेक शिलालेख विद्यमान हैं। संभवतः यह मंदिर चोलों द्वारा ही बनवाया गया था, पर लंका पर चोलों का प्रभुत्व देर तक कायम नहीं रहा। 11वीं सदी के उत्तरार्ध में वहां के पुराने राजवंश के साथ संबंध रखने वाले एक वीर पुरुष ने अपने देश को चोलों की अधीनता से स्वतंत्र कराया। इस प्रतापी पुरुष का नाम कीर्ति था या विजय बाहु श्री संग बोधि था। चोलों के विरुद्ध उसने अनेक युद्ध किए और अपने देश के स्वतंत्रता संघर्ष में सहायता प्रदान करने के लिए बर्मा के बौद्ध राजा अनिरुद्ध से भी प्रार्थना की, समर्थ हो गया। लंका की स्वतंत्र कर उसने पूर्ण रूप को अपनी राजधानी बनाया और उसका नाम बदलकर विजयाराजपुर कर दिया। लंका के इतिहास में विजय बाहु का स्थान अत्यंत महत्व का है। उसने न केवल अपने देश को स्वतंत्र ही किया अपितु बौद्ध धर्म की श्री वृद्धि के लिए भी अनेक कार्य किए। चोलों के आक्रमणों से लंका में बौद्ध धर्म को बहुत क्षति पहुंची थी, बहुत से विहार नष्ट हो गए थे और बौद्ध धर्म ग्रंथ भी ध्वंस से नहीं बच सके थे। भिक्षु इतने कम रह गए थे कि संघ के नियमों के अनुसार 5 का कोरम भी पूरा नहीं हो पाता था। इस दशा में विजय बाहु का ध्यान बर्मा की ओर गया, वहां अनिरुद्ध का शासन था और बौद्ध धर्म जहां खूब फल फूल रहा था। उसने अनिरुद्ध को धर्म ग्रंथ तथा भिक्षु भेजने के लिए लिखा ताकि लंका में बौद्ध धर्म को पुनः स्थापित किया जा सके। अनिरुद्ध ने विजय बाहु की प्रार्थना स्वीकार कर ली और उसके द्वारा भेजे गए भिक्षुओं ने लंका आकर वहां की युवकों को नियमपूर्वक भिक्षु व्रत की दीक्षा दी। इस प्रकार लंका में बौद्ध धर्म के पुनरुत्थान का सूत्रपात हुआ। विजय बाहु के उत्तराधिकारियों में पराक्रम बाहु 1153 से 1187 बहुत प्रसिद्ध है। उसकी नौसेना ने भारत तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया के कंबोज देश पर आक्रमण किए और वहां लंका की विजय पताका फहराई। अपनी राजधानी पोलुन्नसव विजयराजपुर में उसने कितने ही चैत्यों तथा विहारों का निर्माण कराया। लंका की पुरानी राजधानी अनुराधपुर का भी उसने जीर्णोद्धार किया और वहां भी अनेक नए विहार बनवाए। महायान संप्रदाय का वैफुल्यवाद निकाय अब तक लंका में विद्यमान था, उसे दबाकर महाविहार के प्रभाव को स्थापित किया गया। बौद्ध संघ पर भी इस राजा ने अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया। अयोग्य व्यक्ति भिक्षु न बन सके और भिक्षुओं की शिक्षा दीक्षा भी भली भांति हुआ करे, इसके लिए उसने शासन की ओर से अनेक आदेश जारी किए। बौद्ध साहित्य को समृद्ध करने के लिए भी राजा पराक्रम बाहु ने प्रयत्न किया। उसके संरक्षण में स्थवीर काश्यप के तत्वाधान में त्रिपिटक की 8 कथाओं पर कितनी ही महत्वपूर्ण टीकाएं लिखी गईं। पराक्रम बाहु के उत्तराधिकारी अयोग्य और निर्बल थे। उनके समय लंका में फिर अशांति और अव्यवस्था शुरू हो गई और कोई ऐसा शक्तिशाली राजा नहीं रह गया जो संपूर्ण देश में सुव्यवस्थित रूप से शासन कर सके। 13वीं सदी में 16वीं सदी तक लंका की यह दशा रही। इस समय तक पुर्तगीज लोगों ने अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाकर एशिया के देशों में आना जाना प्रारंभ कर दिया। वे व्यापार से ही संतुष्ट नहीं रहे अपितु लोगों को उन्होंने बलपूर्वक ईसाई बनाने का भी यत्न किया। 1552 ईस्वी में लंका के राज सिंहासन पर भुवनय कबाहु विराजमान था। उसने पुर्तगीजों के प्रति मैत्री का व्यवहार किया पर पुर्तगीजों ने भुवनय कबाहु की सौहार्द की नीति से अनुचित लाभ उठाया। भुवनय कबाहु के पूर्व धर्मपाल को उन्होंने ईसाई बना लिया और उसका नाम दान जुआन रख दिया। दरबार के बहुत से प्रमुख व्यक्तियों को भी ईसाई बनाने में उन्होंने सफलता प्राप्त की। ऐसे समय लंका के राजकुल के एक कुमार राज सिंह ने पुर्तगीजों के विरुद्ध तलवार उठाई पर वह भी बौद्ध धर्म का शत्रु था क्योंकि भिक्षु उसके घोर कुकृत्यों तथा पापों को क्षमा करने को उद्यत नहीं थे। उसने स्वयं अपने पिता की हत्या कर दी थी जिस पाप को बौद्ध संघ से क्षमा करवाना चाहता था। पुर्तगीजों के समय राज सिंह ने भी भिक्षु संघ पर अत्याचार प्रारंभ किए और विहारों तथा मंदिरों को लूटना लंका में एक साधारण बात हो गई। भिक्षुओं ने जंगल में भागकर जान बचाई। राज सिंह के उत्तराधिकारी विमल सिंह सूरी ने इस दशा में सुधार करने का प्रयत्न किया पर पुर्तगीजों के अत्याचार को वह नहीं रोक सका। वस्तुतः 16वीं सदी के बाद लंका की राजशक्ति बहुत क्षीण हो गई और देश की राजनीतिक एकता का अंत होकर वहां अनेक राज्य कायम हो गए थे जिनके राजा अपने उत्कर्ष के लिए विदेशी पुर्तगीजों का पक्ष लेने में भी नहीं संकोच करते थे। 17वीं सदी के मध्य तक एशिया में पुर्तगीजों की शक्ति क्षीण होने लग गई थी और उनका स्थान डचों ने ले लिया था। 1556 ईस्वी में उन्होंने लंका से भी पुर्तगीजों को मार भगाया था। डच पुर्तगीजों के समान अत्याचारी व धर्मांध नहीं थे। लंका के आर्थिक राजनीतिक जीवन पर उन्होंने अपना प्रभाव अवश्य स्थापित कर लिया था पर धर्म में वे अधिक हस्तक्षेप नहीं करते थे। पुर्तगीजों और राज सिंह के कारनामों के कारण लंका में बौद्ध संघ छिन्न भिन्न हो गया था। उसे पुनः स्थापित करने का कार्य शरणंकर नामक एक युवा द्वारा किया गया था। लंका में बौद्ध धर्म और संघ की दुर्दशा देखकर उसने निश्चय किया कि संघ की पुनः स्थापना की जाए। 1747 ईस्वी में लंका के राज सिंहासन पर कीर्ति श्रीराज सिंह आरूढ़ हुआ था। शरणंकर के अनुरोध पर राज कीर्ति श्रीराज सिंह ने अपने राजदूत इस प्रयोजन से सियाम भेजे ताकि वे वहां से कुछ स्थवीरों व भिक्षुओं को लंका में बौद्ध संघ की पुनः स्थापना के लिए आमंत्रित करें। सियाम के राजा धम्मिक ने लंका के राजदूतों का अपनी राजधानी अयोध्या में स्वागत किया और सियाम के बौद्ध संघ के के संघ राज की स्वीकृति से महास्थवीर उपाली को 10 भिक्षुओं के साथ लंका भेजा। 1756 की आषाढ़ पूर्णिमा के दिन कांडी श्रीवर्धनपुर में सियाम के भिक्षुओं द्वारा लंका के अनेक व्यक्तियों ने प्रवज्या ग्रहण की और वे भिक्षु बन गए। शरणंकर भी इनमें एक थे। इस प्रकार लंका में बौद्ध संघ की पुनः स्थापना हुई और राजा कीर्ति श्रीराज सिंह ने शरणंकर को लंका के बौद्ध संघ का संघराज नियुक्त किया। यद्यपि लंका में बौद्ध धर्म की पुनः स्थापना हो गई थी, पर उसकी राजनीतिक दशा में विशेष सुधार नहीं हुआ था। वहां की राजनीतिक दुर्दशा से लाभ उठाकर अंग्रेज किस प्रकार लंका के स्वामी हो गए, इस पर प्रकाश डालना यहां संभव नहीं है। 1815 ईस्वी में लंका के अंतिम राजा विक्रमराज सिंह को निर्वासित कर अंग्रेजों ने इस देश के शासन को अधिगत कर लिया था। 20वीं सदी के द्वितीय महायुद्ध के बाद उसने स्वतंत्रता प्राप्त की।